ओम शांति। अव्यक्त मुरली, 3 दिसंबर 1984। कुमारों से मुलाकात, पहला ग्रुप। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है। कुमार जीवन में बाप के बन गए, ऐसी अपनी श्रेष्ठ तकदीर देख सदा हर्षित रहो और औरों को भी हर्षित रहने की विधि सुनाते रहो। सबसे निर्बंधन कुमार और कुमारिया है। कुमार जो चाहे वह अपना भाग्य बना सकते हैं। हिम्मत वाले कुमार होना, कमजोर कुमार तो नहीं। कितना भी कोई अपनी तरफ आकर्षित करे, लेकिन महावीर आत्माएं एक बात के सिवाय कहां भी आकर्षित नहीं हो सकती। ऐसे बहादुर हो। कई रूप से माया अपना बनाने का प्रयत्न तो करेगी, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी, घबराने वाले नहीं। अच्छा है, वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, बस यही सदा स्मृति रखना। हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता, यह नशा रखो। जहां ईश्वरीय नशा होगा, वहां माया से परे रहेंगे। सेवा में तो सदा बिजी रहते हो ना, यह भी जरूरी है। जितना सेवा में बिजी रहेंगे, उतना सहज योगी रहेंगे। लेकिन याद सहित सेवा हो तो क्या है, विजयी है। याद सहित सेवा है तो ही क्या है, सफलता है। तो ही सच्ची सेवा, सफलता और निर्विघ्न सेफ्टी। याद सहित सेवा हो तो ही सेफ्टी है, याद नहीं तो सेफ्टी नहीं। तो तीन ग्रुप्स है इसमें। कुमारों से मुलाकात 3 दिसंबर 1984 की मुरली है, जिसमें बाबा कह रहे हैं कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है। कुमार जीवन में बाप के बन गए, ऐसी अपनी श्रेष्ठ तकदीर देख सदा हर्षित रहो और औरों को भी हर्षित रहने की विधि सुनाते रहो। विधि कौन सुना सकता है, जो स्वयं हर्षित है, जो स्वयं दलदल से बाहर है, वही दूसरों को दलदल से बाहर कर सकता है। सबसे निर्बंधन कुमार और कुमारिया है। कुमार जो चाहे वह अपना भाग्य बना सकता है। हिम्मत वाले कुमार होना, कमजोर कुमार तो नहीं। कितना भी कोई अपने तरफ आकर्षित करे, लेकिन महावीर आत्माएं एक बाप के सिवा कहां भी आकर्षित नहीं हो सकती। ऐसे बहादुर हो। कई रूप से माया अपना बनाने का प्रयत्न तो करेगी, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी, घबराने वाले नहीं। अच्छा है, वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, बस यही सदा स्मृति रखना। स्मृति अर्थात, स्मृति का अर्थ केवल वैसा ही है जैसे संसार के लोग मानते हैं। संसार के लोग स्मृति को मेमोरी समझते हैं, जैसे किसी को सब याद रहता है। फोन नंबर एक बार बताओ तो याद, कोई किताब पढ़ो तो याद। क्या है, वही अर्थ है स्मृति का। जब भगवान स्मृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है,
जागरूकता।
स्मृति का अर्थ जब भगवान कहते हैं तो वो अर्थ नहीं है जो संसार के लोग कहते हैं। स्मृति अर्थात कंप्लीट माइंडफुलनेस, संपूर्ण जागरूकता, संपूर्ण जागरण, संपूर्ण सचेत अवस्था। ऐसी जो अवस्था है, वॉचफुलनेस, माइंडफुलनेस सबसे बेस्ट वर्ड है उसके लिए। इतनी सतर्कता, चौकस, इतनी जागरूकता, भाव स्मृति का अर्थ है। तो इस भाव में संपूर्ण जागरण, किस भाव में, वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, यह स्मृति का अर्थ है। स्मृति का अर्थ केवल मेमोरी नहीं है, वो तो संसार वाले समझते याददाश्त। तो हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता, यह नशा रखो। परंतु नशे में अहंकार आने की संभावना होती है, इसके लिए कल के वरदान में क्या कहा था, रुहाब के साथ क्या चाहिए, रहम। रहम को क्यों जोड़ा गया रुहाब के साथ, रहम का क्या संबंध था रुहाब से, क्योंकि अहंकार को नष्ट करने के लिए। क्योंकि जहां रुहाब अर्थात बॉडली इंटॉक्सिकेशन, रुहाब अर्थात वह नशा, अभी नशा जहां है, चाहे वो धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, उसमें अभिमान की संभावना हो सकती है। परंतु यहां जो नशा है, वो यदि ज्ञान का हो या इस तरह के जो भी गॉडली ईश्वरीय नशे जो है, उसमें भी शायद अभिमान आ सकता है। इसके लिए बाबा कह रहे रहम और रुहाब, ये दोनों साथ साथ भी हो और समान हो। क्या कहा मुरली में, वरदान में, साथ साथ, एक शब्द था साथ साथ और दूसरा शब्द था समान। तो नशा, रुहाब और रहम दोनों साथ साथ हो, तभी क्या बन सकोगे, विश्व कल्याणकारी। तभी क्या बन सकोगे, रूहानियत की स्टेज। तभी क्या हो सकता है, विश्व नव निर्माण के निमित्त। ये तीन चीजें हो सकती है। विश्व नव निर्माण के निमित्त कब बनोगे, जब ये दो चीजें, दो दिव्य गुणों का बैलेंस, दो दिव्य गुण समान हो और साथ साथ हो। उदाहरण कौन सा दिया बाबा ने समझाने के लिए, देवियों के चित्र का उदाहरण। देवियों में एक तरफ तो संघारी रूप है और दूसरी तरफ रहम का रूप है। यहां संघारी रूप को बाबा ने रिप्लेस किया रुहाब से, अर्थात नशा। उनको नशा कौन सा है, देवियों को नशा कौन सा है, देवी अर्थात स्वयं को किसकी पत्नी समझती है, शिव की, शिव सुता है वो, शिव सुते, पार्वती, दुर्गा, काली, ये महाशक्ति, महागौरी, ये सारे रूप किसके हैं, एक आदि शक्ति के रूप है। आदि शक्ति अर्थात जो महाशक्ति है, उसके साथ जो निरंतर रहती है, जो शिव के साथ रहने वाली है, यह नशा, उसी का जो रूपांतरण दिखाया है संहारी रूप, जो कि असुरों के सामने कोई असुर वार नहीं कर सकता, मां वह संहारी रूप धारण करती है, काली का रूप धारण करती है। परंतु साथ साथ वो काली का रूप निरंतर नहीं रहता है उसका ना, उसका मेन रूप तो पालना का है, स्नेह का है, ममता का है, श्रद्धा का है, स्नेह का है, इस तरह उसका रूप है। यहां बाबा कह रहे हैं वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर। बस सदा यही स्मृति रखना है, स्मृति रखना केवल याद रखना नहीं, केवल मेमोरी में फिट हो जाना नहीं, जागरण, वॉचफुलनेस, माइंडफुलनेस, ये जागरण होगा तो सदा ही शक्तिशाली स्थिति होगी। जागना है स्थिति, इस संकल्प के साथ जागरण की अवस्था हो, जहां थोड़ी सी भी बेहोशी होगी तो क्या होगा, आंखें बंद होगी। स्लोगन था ना, मेरा बाबा दिल से कहो, तो क्या होगा, माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। परंतु वो मेरा बाबा ऊपर ऊपर का नहीं, मुख का सौदा नहीं, अंदर से निकलना चाहिए ऐसी जागरण की अवस्था से। ऐसा जागरण जहां होगा, उस जागरण की अवस्था से जो निकलेगा, वो बाहर निकलने का भी बात नहीं है, वो शब्दों का खेल नहीं है। भाव, भाव दशा क्या है चित्त की, तब माया की बेहोशी समाप्त होगी और आंख खुलेगी। वह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, सदा बस यही सदा स्मृति रखना है। इसी अवस्था में जागना है, उसमें सिर्फ मेमोरी आ जाएगी। जागरण बहुत बड़ा बड़ी चीज है, उसमें एक छोटा सा उसका एक महत्वपूर्ण भाग है सिर्फ मेमोरी, कि वो याद रहे। पर केवल याद रहे ये स्मृति नहीं है। स्मृति का एक छोटा सा हिस्सा याददाश्त है, बाबा की परिभाषा के अनुसार। हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता, यह नशा रखो। राज्य ऋषि और राज योगी हम है, आज बोला ना मुरली में, जहां ईश्वरीय नशा होगा वहां क्या होगा? खुशी होगी। और क्या होगा? नशा वाला व्यक्ति का क्या क्या होता है हाल? संसार याद नहीं रहता उसे, आसपास क्या हो रहा है उसे पता नहीं होता है। जहां ईश्वरीय नशा होगा वहां माया के वार से परे रहेंगे। ईश्वरीय नशा इतना ज्यादा है, माया अर्थात वह संकल्प जिसमें विकार है, वह संकल्प जिसमें देह का आकर्षण है, वह संकल्प जो देह भान में लाने वाला है, ऐसा संकल्प ईश्वरीय नशे के संकल्पों के दुर्ग में कैसे प्रवेश कर सकता है? वहां माया से परे रहेंगे। सेवा में तो सदा बिजी रहते हो ना, यह भी जरूरी है। कोई सोचे कि सेवा छोड़कर केवल मैं तपस्या करूं, संकल्प बहुत श्रेष्ठ है और बहुत ऊंचा है, परंतु माया कब कहां आ जाए? आज स्थिति तुम्हारी बहुत अच्छी है जब यह संकल्प उठ रहा है, परंतु कल का कोई भरोसा? खाली मन होगा तो इधर उधर से नए नए आकर्षण, जिनका कभी सोचा भी नहीं था, वो सारे आकर्षण तैयार हो जाएंगे। जितना सेवा में बिजी रहेंगे, सोचते सेवा भी एक बंधन है, इसको छोड़ो तो बहुत तपस्या हो जाए, परंतु ये भी एक सूक्ष्म और बहुत ही रॉयल माया है। मधुबन में तो रहना है, परंतु सेवा रहित, केवल तपस्या के लिए। सेवा कोई दूसरा करे, हम केवल तपस्या करें, सुबह से लेकर रात तक ज्ञान करे और तपस्या, ज्ञान और योग। सेवक भी करे तो केवल ज्ञान वाली, बस वो भी बहुत नहीं, ऐसा हर एक चाहता है, परंतु और उसमें कोई माया भी नहीं है। क्योंकि माया तो तब आती है जब व्यक्तियों के संपर्क में जाते हो, जब सेवा के फील्ड में उतरते हो वहां माया चालू होती है। सुबह 8 बजे तक क्या माया? अमृत वेला करो, ज्ञान योग करो, यहाँ बैठो, क्लास सुनो, सुनाओ। माया का काम कोई सवाल नहीं है, माया इस गेट के बाहर है। ये जब किताब बंद होगी और माइक बंद होगा, और जब निकलोगे अपने सेवा के फील्ड में और टकराओगे दूसरों के संस्कारों के साथ, तो वहां माया का आगमन होता है। तो परंतु वो भी जरूरी है, क्योंकि वो अगर नहीं हो तो कुछ दिन ठीक चलेगा, फिर नए नए रूप से माया आना चालू होगी। यह भी जरूरी है, जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज योगी होंगे, लेकिन याद सहित सेवा हो तो सेफ्टी है, याद नहीं तो सेफ्टी नहीं। इसके लिए यह भी बहुत आवश्यकता है कि इसको बहुत मजबूत बनाओ, ज्ञान और योग के फाउंडेशन को, ताकि इसका प्रभाव जब सेवा के फील्ड में जाओ तो भी चलता रहे। साइकिल चल रही है, पैडल मार रहे, पैडल मारना जब बंद कर दिया उसके बाद भी कुछ समय तक वो चलती रहती है, वो मोमेंटम उसको चलाता है कुछ समय तक। ये ज्ञान योग सुबह पैडल इधर मारते रहना है, तो जब रुकेगा और सेवा के फील्ड में जाओगे तो भी वो गाड़ी चलती रहे वहां पर, कम से कम शाम तक अपने आप चलती रहे, फिर वापस इधर आ जा नए पावर भरने के लिए। तो बाबा कुमारों से मुलाकात कर रहे, 13-12-84 की मुरली है। प्रथम ग्रुप कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, कुमार जीवन में बाप के बन गए, ऐसी अपनी श्रेष्ठ तकदीर देख सदा हर्षित रहो। क्यों कह रहे हैं हर्षित रहो बाबा? शायद थोड़े कम हर्षित रहते होंगे, और औरों को भी हर्षित रहने की विधि सुनाते रहो, क्योंकि जो अविवाहित है वो हमेशा विवाह का सोचता है और जो विवाहित है वो अविवाह का सोचता है। यही विडंबना है इस संसार में। जो जिसके पास नहीं है वो उसे वो चाहिए और मिलते ही उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है और इसी तरह से आकर्षण कायम रहता है।
लड्डू खाए तो पता नहीं है क्यों।
इसके लिए बाबा कह रहे कुमार जीवन में बाप के बन गए हो, ऐसी अपनी श्रेष्ठ तकदीर देख सदा हर्षित रहो, औरों को भी हर्षित रहने की विधि सुनाते रहो। सबसे निर्बंधन कुमार और कुमारिया है, परंतु बंधन में जाने का आकर्षण खींचता है। जाकर खुद पिंजरे में बंद जाओ, ये एक अजीब प्रकार का प्रलोभन है। बार बार कदम बढ़ते हैं पिंजरे की तरफ, और कब अंदर जाऊं और कब दरवाजा बंद करके अंदर कैद हो जाऊं, ये कैसी अद्भुत इच्छा है मनुष्य के मन में। इधर कुमार जो चाहे वह अपना भाग्य बना सकते, हिम्मत वाले कुमार हो, कमजोर तो नहीं हो, नहीं हो, कितना भी कोई अपनी तरफ आकर्षित करे, लेकिन महावीर आत्माएं एक बाप के सिवा कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकती। ऐसे बहादुर हो, कई रूप से माया अपना बनाने का प्रयत्न तो करेगी, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी घबराने वाले नहीं हो। अच्छा, कितना भी कोई अपनी तरफ आकर्षित करे, लेकिन महावीर आत्माएं एक बाप के सिवा कहीं पर भी आकर्षित नहीं होती। आकर्षण का खेल है संसार में, और कुमार और कुमारियों में आकर्षण बहुत ज्यादा है। क्यों? संसार में जो सन्यासी हुए थे और जो भिक्षु थे उनमें आकर्षण संसारियों की तुलना में अधिक था। क्यों? नए नए फूल है, साधु लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे और बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। क्यों? ताकि आकर्षण ना हो, क्योंकि एक सन्यासी में जो आकर्षण होता है वो संसारी में नहीं होता है। एक सन्यासिनी में जो आकर्षण होता है वो संसारी जो गृहस्थी गृहिणी है उसमें वो आकर्षण नहीं है। ये सूक्ष्म बात है। आकर्षण कुमार और कुमारियों में अधिक है। ब्रह्मा कुमार जो है वो गृहणियों से इतना आकर्षित नहीं होंगे जितना कुमारियों से होंगे। ब्रह्मा कुमारिया जो है वो संसार के कुमारों से उतना आकर्षित नहीं होगी जितना ब्रह्मा कुमारों से आकर्षित होगी। क्यों? क्योंकि प्यूरिटी की पावर वहां पर है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का एक अजीब सा सौंदर्य है, अपूर्व सौंदर्य होता है ब्रह्मचर्य का। वो आकर्षण देह का नहीं है, हो सकता है किसी की देह भी सुंदर हो, परंतु वास्तव में आकर्षण देह का नहीं है, क्योंकि वो तो दिया है। जब ज्योत जलने लगती है तो दिए को कौन देखता है? ब्रह्मचर्य वह ज्योत है, जब जहां वो जल जाती है तो व्यक्तित्व में अपूर्व आकर्षण उत्पन्न होता है, वही आकर्षण खींचती है। बुद्ध के एक सन्यासियों में एक भिक्षु था, अति तेजस्वी और ब्रह्मचारी। उस पर एक स्त्री मोहित हो जाती है, इस तरह से मोहित होती है, बहुत ज्यादा मोहित, उसको हर तरह से प्रलोभन देती है गृहस्थी बन जाने के लिए। बुद्ध केवल देखते रहते हैं, क्योंकि सीधा किसी को उपदेश देना ये बुद्ध की स्ट्रेटेजी नहीं है। वो केवल देखते रहते हैं क्या हो रहा है इसके मन में। वो हर तरह से उसे प्रलोभन देती है। बहुत अमीर घर की स्त्री है, उसके पास सारी सुख है और सारी सुविधाएं हैं, और समर्पण भाव भी उसका बहुत ज्यादा है। सब कुछ न्योछावर कर देना चाहती है, और उसका आकर्षण उसी सन्यासी में है। संसारियों के ऊपर आकर्षण नहीं, कारण वही है प्यूरिटी का। जवान है युवक, वो भी एक कारण हो सकता है, परंतु वो कारण इतना बड़ा नहीं। उससे एक महत्वपूर्ण कारण है ब्रह्मचर्य का, ज्ञान का। ज्ञान का भी आकर्षण होता है। संसारी व्यक्ति साधारण व्यक्ति होते हैं, परंतु सन्यासी होता है जो, वो असाधारण होता है। उसकी प्रतिभा, उसका आंतरिक ज्ञान और उसका जो तेज और रोज होता है वो स्वतः ही आकर्षित करता है। यही बात उधर भी उतनी ही सही है, स्त्री को पुरुष का और पुरुष को स्त्री का। वास्तव में ये जो आकर्षण है ये वो ईश्वर का आकर्षण है, विराट का आकर्षण है, परंतु उस आकर्षण को, उस प्रेम को वो हद में ढूंढते हैं और जब पा लेते हैं इसके लिए वहां पर व्यर्थता आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी एक दूसरे से वो पूर्ण नहीं हुई। पाने के बाद भी अपेक्षाएं तो बहुत थी कि मिल जाए, पर मिलते ही पता चला व्यर्थ है। मिलते ही पता चला जो सुख की कामना रखी थी वो क्षणभंगुर है। वास्तव में यह आकर्षण भी उस विराट का आकर्षण है जो गलती से मनुष्य स्त्री में देखता है और स्त्री पुरुष में ढूंढती है, और जैसे ही पाते हैं पता चलता है वो वहां है ही नहीं, एब्सोल्यूट फ्रस्ट्रेशन। और यही चक्र है, और जो जिससे जितना भागता है उससे आकर्षण और ज्यादा होता है। यदि पुरुष किसी स्त्री से भागे तो उस स्त्री को उसके प्रति और आकर्षण होता है, अगर उसके पीछे पुरुष लग जाए तो स्त्री उससे दूर भागती है। ये स्त्री के लिए जैसा है वैसा पुरुष के लिए भी है। जो जिसके पीछे जितना भागता है उसके प्रति उसको आकर्षण कम होता है, वो उससे और दूर जाता है। आप मुंह इधर कर दो तो वो आपके पीछे आएगा या आएगी। ये दोनों तरफ है, ये आकर्षण का खेल है, आकर्षण विकर्षण, आकर्षण विकर्षण, और ये कायम बना रहता है। इसके लिए यहां बाबा कह रहे एक बाप के सिवा और कहीं भी आकर्षित ना हो। आकर्षण होता है, आकर्षण को काटने की विधि क्या है? फिर जो बताया बुद्ध का वो जो उदाहरण कि वह जो सन्यासी है पहले तो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसका तो ब्रह्मचर्य का भी अपना एक अहंकार होता है छोटा। पहले वो तो पहले बहुत उसको ध्यान नहीं देता है, उसकी तरफ उसको देखता नहीं, परंतु वो भी कोई हार मानने वाली स्त्री नहीं है। अलग अलग रीति से प्रलोभन, सुरक्षा और सुविधा का प्रलोभन देती है। एक तरफ है स्वतंत्रता, दूसरा है सुविधा और सुरक्षा। वो कहती है मेरी तरफ आ जाओ तो तुम्हें सब सुविधाएं मिल जाएगी, कब तक इन भीख मांगते रहोगे यहां से वहां और वहां से वहां। यहां आ जाओ तो भीख मांगने की जरूरत नहीं, यहां आ जाओ तो सब सुविधाएं है, सुविधाएं है, परंतु स्वतंत्रता नहीं है। सुख है परंतु वह स्वतंत्रता नहीं है। और वो सन्यासी धीरे 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 पहले तो मन में बड़ा दृढ़ होता है, बाद में धीरे धीरे पिघलने लगता है, सोचने लगता है बात तो सही कह रही है, कब तक भीख मांगते रहूंगा और कब तक नंगे पाव घूमते रहूंगा इस दरवाजे से उस दर से उस दर, क्या यही जीवन है? बस ये बुद्ध का तो भरोसा नहीं, खुद ही छोड़ के आ गया अपनी पत्नी बच्चे को अभी हम हमारा क्या होगा? इस तरह के संकल्प वहां, तब भी बुद्ध शांत है, देख रहे हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ योगी है और श्रेष्ठ सन्यासी है। उसे पहले अवसर तो दिया जाए कि वो खुद ही रेजिस्ट करे, खुद ही उसका विरोध करे, खुद ही स्वयं को बचाए। परंतु जब देखता है अब उसकी तैयारी हो गई है बंधन में बंध जाने की, और उसके हृदय में भी वासनाएं उठ चुकी है जिसे वो प्रेम की संज्ञा दे रहा है, तो उसे समझाता है एक बार। और समझाने का तरीका भी ऐसा होता है, स्मृति को जगाओ, जागरण को लाओ, होश जगाओ, इस तरह के दो तीन शब्द है उसमें, जो अपने शिष्य को कहते हैं, भिक्षु को, कि स्मृति को जगाओ, याद करो कितनी बार इसी बंधन में फंसे होंगे, कितने कितने अनंत जन्मों में, कितनी बार पछताए होंगे और अभी फिर फंसने जा रहे हो, और उसको प्रेम कह रहे हो। क्या वास्तव में वह प्रेम है? प्रेम वह नहीं हो सकता है, प्रेम कभी, क्योंकि संसार में जो बताए होते हैं, शादी हो गई मतलब सुख चालू, जो फिल्में हैं उसमें क्या दिखाते हैं, एंड कहाँ होता है? मैरिज, मैरिज हो गया अभी सुख हुआ, सुख चालू, परंतु वहां से तो दुख की शुरुआत होती है, शहनाई बजती है उसके बाद में दुख बजना चालू होता है परंतु उसमें कुछ और दिखाते हैं, उसमें उल्टा दिखाते हैं, शहनाई उधर बजती है और फिर दुख बजता है। दो दुखी व्यक्ति, चलो एक अकेला है, उसको लगता है मैं कब तक अकेला रहूं, कोई मिल जाए साथी, परंतु वो दुखी है, परंतु ये भूल जाता है कि एक दुखी और वो दूसरा दुखी, दो दुखी मिलके दुगुने दुखी, महादुखी। एक पहले ही दुखी था, अभी डबल दुखी हो गया, अनंत गुना दुखी। तो कैसे हो सकता है, सुख उत्पन्न नहीं हो सकता है। और उसको वो प्रेम कहते हैं, क्या वो वास्तव में प्रेम है? प्रेम अर्थात त्याग, प्रेम जिससे प्रेम है उसे स्वतंत्र रखा जाए, उसको हम बांध रहे हैं, जैसे कोई फूल बहुत पसंद आए उसको तोड़ना वहां से, ये प्रेम नहीं है। उसको वहीं खिलने देना, उसकी स्वतंत्रता कायम रखना, ये प्रेम है। वो पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसको मारना वो नीचे गिरेगा, या फिर उसको पकड़ के पिंजड़े में डाल देना, ये क्या प्रेम है? पर मनुष्य इसी को प्रेम कहता है, और इसी प्रेम को दूसरा शब्द कहता है विवाह, जहां दो भिखारी एकत्र होते हैं और दोनों को अपने एक दूसरे को सम्राट बनाने की चेष्टा करते हैं। इसी को समाज विवाह की संज्ञा देता है। कैसे सुखी हो सकते हैं? संपन्नता चाहिए दोनों में भी, ये अपूर्व आकर्षण, अद्भुत सा आकर्षण है। होता है कि वो सन्यासी जाग जाता है, ऐसा बहुत कम होता है। और आकर्षण, जैसे कहा ब्रह्मचर्य जहां होगा वहां आकर्षण, और बाबा इसके लिए कहते हैं ना, कुमार और कुमारियों को माया बहुत प्यार करती है, उनमें माया ज्यादा संकल्प आते हैं इन सब चीजों के, क्योंकि तेज है वहां पर, एक अद्भुत सा प्रकाश है उस वाणी में भी, एक तेज है। ऐसी वाणी संसारी व्यक्तियों की नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां ओज में परिवर्तन हुई है। वो शक्ति, जो शक्ति नीचे बहनी चाहिए वो ऊपर बह रही है। संसारी व्यक्तियों की शक्ति नीचे बहती है और शरीरों को जन्म देती है, यहां वो शक्ति इतनी महान शक्ति है, वो कोई शरीर जन्म हो सकता है उससे, वो शक्ति वहां रुककर अभी ऊपर बहने लगी है। सारे चक्र जैसे जागृत हो रहे हैं, तो वो शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं होगी। वही शक्ति जब सेवा के क्षेत्र में जाएगी तो अभूतपूर्व कार्य करेगी। वही शक्ति जब वाणी बनेगी, उस वाणी में एक ब्रह्मचर्य का प्रकाश होगा और तेज होगा, जिसे न चाहते हुए भी, चाहते न हुए भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। वो बोल घुसेंगे तीर की तरह और चुभेंगे, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है उस स्पीच में, चाहे किसी भी क्षेत्र में चला जाए फिर वह व्यक्ति, क्योंकि वो ईश्वरीय पावर है। पावर एक ही है, दो पावर नहीं है, पावर एक ही है। नीचे अगर बहे तो काम विकार, ऊपर अगर बहे तो ईश्वरीय नशा, ओनली वन पावर। कहां उसको जाने देना, ये हमारे ऊपर है। अब ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा तो पावर कम होगी, केवल ऊपर अगर बहने लगे तो अभूतपूर्व शक्ति, पूर्व शक्ति हमारे अंदर संचय होगा उसका। और जिन पुरुषों में और जिन स्त्रियों में ऐसी शक्ति होती है वो आकर्षण का केंद्र बनते हैं, परंतु वहां फिर और दूसरे प्रकार की माया, वही जो कहा आकर्षण वाली, वो चालू होती है। इसके लिए माया किस रूप से आती है, माया का ज्ञान बहुत जरूरी है। यहां यहां आ सकती है, यहां यहां देह का आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है इस देह से वैराग, तत्वों से वैराग। इसके लिए अमृत वेला, कल अचानक हम जब अमृत वेला योग कर रहे थे तो एक ऐसा एक दिव्य अनुभव हुआ कल के अमृत वेले में, कि हमने देखा कि संसार जो है वो नीचे है, और संसार के सारे शरीर है, स्त्रियों के शरीर और पुरुषों के शरीर, और इन सारे शरीर जैसे है जैसे मिट्टी के पुतले हैं, और हम ऊपर है, यहाँ तत्वों से ऊपर, आकाश से भी ऊपर। और ये जो सारे है ये तत्व है, और ये गिर रहे, मिल रहे, टूट रहे, फूट रहे, इन आकर्षण से हमें क्या? यहां सब कुछ हो रहा है, यहां शरीरों का मिलना, इसमें भी कोई आकर्षण है? ये मिट्टी के पुतले मात्र है, केवल मृण में ही है, केवल हम तो ऊपर है। इस देह के खेल में हम नहीं आ सकते, ये देह का खेल मात्र है। तो एक बहुत अच्छा, एक अजीब सा एक अनुभव हुआ कि जिससे लगा कि ये देह की दुनिया से ही हम परे हैं। तो इस तरह के अभ्यास हमको करना है कि हम फरिश्ते हैं और संसार नीचे है, यहाँ की कोई आकर्षण हमें खींच नहीं सकती। तो अभी हम अभ्यास करेंगे फरिश्ते स्वरूप का, कमेंट्री करना।